ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मेडिटेशन सीखेंगे। वैसे तो दो दिन से तो सुन ही रहे हैं मेडिटेशन के बारे में, थोड़ा बहुत आता होगा अभी मेडिटेशन करना, लेकिन आज बहुत ही डिटेल में मेडिटेशन क्या है, राजयोग क्या है और करने की विधि क्या है, वो आज समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी प्रक्रिया करते हैं, तो उसको उसके एक मेथड होता है, विधि होती है। इसलिए कहा जाता है विधि से सिद्धि। मेथड को या विधि को अगर फॉलो नहीं करते तो अंतिम रिजल्ट तक या सिद्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर रिजल्ट नजर दिखाई नहीं दे रहा है, रिजल्ट महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विधि में गड़बड़ है या विधि हम ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम देखते हैं मेडिटेशन करने की विधि क्या है, और दूसरी बात है वो बेसिस, आधार क्या है, मेडिटेशन हमें क्यों करना है और किसकी मदद से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। इन दोनों बातों को आज देखेंगे, और उन दोनों बातों को देखने से पहले हम पहले ये समझें योग क्या है। योग माना जोड़, मिलन, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप। वियोग माना बिछड़ना, अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। योग माना मिलन, जोड़। इसको हम कनेक्शन कह सकते हैं, रिमेम्बरेंस या याद। हम किसी को याद करते हैं तो भी वो योग हो जाता है। तो योग मेनली यूनियन है या कम्युनिकेशन है। तीन प्रकार के योग है, तीन लेवल से हम योग लगाते हैं। एक चीज होता है फिजिकल चीजों का मिलन, जैसे दूध में शक्कर डाला, वो घुल गया, मिल गया, वो अलग नहीं हो सकते। अभी ना दूध और शक्कर दो चीजों का मिलन हो गया, या फिर रेडियो को हम ट्यून करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम मिल, वो रेडियो मिल गया तो उसका मिलन हो गया, या दो वायर जो इलेक्ट्रिक वायर्स को जब हम मिलाते हैं, जॉइन करते हैं, ऊपर के इंसुलेशन निकाल करके फिर कॉपर वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं, वो दो कॉपर वायर्स का कनेक्शन हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो गया। ये फिजिकल चीजों का मिलन हो गया। और दूसरी चीज है मेंटल लेवल का कम्युनिकेशन, मेंटल लेवल का योग। हम किसी को भी याद करते हैं, हम दो चीजों को याद करते हैं, व्यक्ति या वस्तु को हम याद करते हैं। याद करने से क्या होता है, हमारा मेंटल कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ या वस्तु के साथ कनेक्ट हो गया। तो याद भी योग हो गया। हम यहां योग किसके साथ लगा रहे हैं, व्यक्ति के साथ योग लगा रहे हैं या वस्तु के साथ। अगर मैं गाड़ी को याद किया, घर को याद किया, कंप्यूटर को याद किया, वो वस्तु को याद किया, तो मेरा योग उस वस्तु के साथ लग गई, है ना। तो और तीसरा लेवल है स्पिरिचुअल लेवल या आध्यात्मिक लेवल का योग, जहां आत्मा का योग परमात्मा के साथ होता है, आत्मा का कनेक्शन कम्युनियन परमात्मा के साथ होता है, वो सर्वोच्च योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले जो भी हम जिन व्यक्ति को वस्तु को याद करते आए हैं उनसे हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं कुछ। अगर कोई व्यक्ति उदास है, उस व्यक्ति को याद किया हम भी उदास हो जाते हैं, है ना, दुख अनुभव करते हैं। तो वो जिस फ्रीक्वेंसी में है, जिन वाइब्रेशंस में है, वो वाइब्रेशंस हम भी महसूस करते हैं। यहां कुछ पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन परमात्मा के याद से, परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा हायर लेवल, हायर डायमेंशन तक पहुंच जाती है, सशक्त हो जाती है। तो इसीलिए इस योग को सर्वोच्च योग कहा या राजयोग कहते हैं इसको। वैसे तो शास्त्रों में अष्टांग योग के बारे में जिक्र है, शास्त्रों में अष्टांग योग के बारे में जिक्र है सभी योगों, लेकिन वहां भी कहा जाता है सभी योगों का राजा राजयोग है। उसमें अष्टांग योग में यह कहा जाता है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, अलग अलग प्रकार के योग है, जहां ज्ञान योग माना ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति माना जहां प्यार है, प्यार के आधार से हम परमात्मा को याद करते हैं। लेकिन इस योग को करने के लिए विधि क्या अपनाना है वो आज हम देखते हैं। मेडिटेशन करने के लिए हम कहीं भी कंफर्टेबल एक स्थिति में, एक पोजीशन में, मेडिटेशन करने के लिए कोई भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ करके हम कर सकते हैं। कोई भी हठयोग नहीं है, कोई भी आसन आदि को लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ता है। तो अष्टांग योग के बारे में कह रहे थे, अष्टांग योग में समत्व योग है, बुद्धि योग है, संन्यास योग, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये सभी आठ प्रकार के योग है। तो इसमें एक एक का मतलब एक एक होता है कि ज्ञान योग माना समझना, रीजनिंग, एनालिसिस और विजडम उसमें इन्वॉल्व होता है। भक्ति योग माना जहां प्यार है, डिवोशन है, विश्वास है, फेथ है, उसको भक्ति योग कहते हैं। हठ योग माना डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, विल पावर। बुद्धि योग माना बुद्धि को कहा जाता है आत्मा का तीसरा नेत्र, उसके द्वारा हम विजुलाइजेशन करते हैं, बुद्धि के अंदर क्लैरिटी होती है। संन्यास योग माना डिटैचमेंट, यहां घर बार को संन्यास करने की जरूरत नहीं है, बुद्धि से डिटैचमेंट होगा तो फिर इसको राजयोग कहते हैं। कर्म योग माना कर्म करते समय हम निमित्त भाव से जब हम कर्म करते हैं उसको कर्म योग कहते हैं। समत्व योग माना बैलेंस, लॉजिक और भावनाओं का बैलेंस, लव और लॉ का बैलेंस, हर चीज के बैलेंस में जब हम चलते हैं वो बैलेंस समत्व योग हो गया। तो राजयोग में इन सातों ही प्रकार के योग सम्मिलित है। राजयोग करने के लिए अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, समझ की जरूरत है, समझ के साथ साथ भावनाओं की जरूरत है, उसके साथ साथ डिसिप्लिन की भी जरूरत है। लाइफ किट में डिसिप्लिन, बुद्धि से क्लैरिटी, विजुलाइजेशन, रिनाउंसिएशन या डिटैचमेंट। और राजयोग करने के लिए हम ये नहीं कहते हैं कि आपको घर बार छोड़ना है, कर्म करते समय भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं जिसको हम कर्म योग कहते हैं। और मेडिटेशन जब हम लाइफस्टाइल में हमारा मेडिटेशन आ जाता है, हर चीज में हमारे जीवन में बैलेंस नजर आने लगता है। तो राजयोग का डेफिनेशन क्या है? राजयोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, राजयोग बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जो इसमें कहा जाता है अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। इसीलिए मैं श्रीमद् भगवद्गीता में कहा मन मना भव, मना अपने आप को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना, ये राजयोग है। शरीर और शरीर के संबंधों को भूल करके आत्मा निश्चय करके परमात्मा को याद करना, ये सिंपल है लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसके लिए करने की विधि हम देखते हैं। सबसे पहले बाहर से लेकर के अंदर के तरफ पहले शारीरिक पोस्चर को देखते हैं, फिर धीरे धीरे जाकर के मेंटल पोजीशन या फिर मन में क्या सोचना है उसके बारे में भी देखते हैं। फिजिकली अगर देखें, आपको कहीं भी कोई भी आसन लगा करके बैठना, कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन में बैठने की जरूरत नहीं है। आराम से कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में आपको बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कहे कि पद्मासन में बैठ करके याद मेडिटेशन में बैठना है या फिर कोई और आसन में, अगर कोई फिजिकल एलिमेंट्स है, अगर दर्द है, उस समय पद्मासन में हम नहीं बैठ सकते। बुद्धि पूरा जहां दर्द है वहां जाता है। तो इसीलिए कोई भी कंफर्टेबल लेकिन अलर्ट पोजीशन में बैठ करके हम मेडिटेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात है आधार, कौन सी चीजों को आधार हम ले। यहां हम कहते हैं माला फेरने की जरूरत नहीं, फिजिकल चीजों को हम आधार के रूप में नहीं ले रहे हैं। माला फेरने की जरूरत नहीं है। क्यों? कबीर जी ने बहुत सुंदर दोहे में कहा है कि माला फेरत युग हुआ गया न मन का मेल रे। माला हम बहुत युगों से फेर रहे हैं लेकिन मन के मेल गया नहीं है। हाथ का मन का छोड़ के मन का मन का फेर ले। माना हाथ के मन के फेरते फेरते क्या होता है कि हम चलो एक मंत्र लेकर के हम जाप लगा रहे हैं और मंत्र माला फेर रहे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मन कहाँ तक एकाग्र हो सकता है? 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एकाग्र हो सकता है। लेकिन बाद में हाथ से हम मन का फेर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, लेकिन मन क्या कहेगा कि चलो थोड़ा बहुत घूम करके आता हूं। कि मन को वैरायटी की जरूरत होता है। एक एक रूटीन में जो हम चलना शुरू होता है तो मन वहां शट डाउन हो जाता है। फिजिकली तो हम कर ही रहे हैं लेकिन मन वहां शट डाउन हो जाता है। तो इसीलिए फिजिकल चीजों को आधार बना करके मन को कंट्रोल करने जाए वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन सूक्ष्म है, मन को हम देख नहीं सकते। एक सूक्ष्म चीज को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल को आधार बनाए ये वो पॉसिबल, मतलब लंबे समय तक वो उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माला फेरना जरूरी नहीं है मेडिटेशन करने के लिए और मंत्र जाप करने के लिए भी जरूरत नहीं है। क्योंकि मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र माना एडवाइस। मंत्री जिसको कहा, किसको कहा जाता है? एडवाइजर को मंत्री कहा जाता है। मंत्र माना एडवाइस, मन को एडवाइस सजेशन देना मंत्र का काम होता है। लेकिन वही मंत्र बार बार रिपीट करते हैं तो वहां फिर वो रूटीन में आ जाते हैं लेकिन फिर मन फिर भागना शुरू हो जाता है। इसीलिए केवल मंत्र जाप नहीं लेकिन मंत्र के अर्थ में टिकना, एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्रता की इम्पोर्टेंस है, है ना? तो एकाग्र होना बहुत जरूरी है। हठ योग, कोई सोचते हैं योग माना प्राणायाम या फिर फिजिकल एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा केवल हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं वहां, लेकिन मेंटल या फिर वो परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ता है। इसीलिए इसको हठ योग कहते हैं, राजयोग नहीं कहते। फिजिकल योग को हठ योग कहा जाता है जिसके द्वारा हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। मेडिटेशन करने के लिए कोई भी मूर्ति का आधार भी हम लेते नहीं है, क्योंकि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा करते हैं देवी देवताओं की। पूजा करने से हमें कुछ प्राप्तियां जरूर होती है, लेकिन हमें यहाँ लक्ष्य है उन जैसा बनने की फिजिक। और दूसरी बात यह है कि जहां मूर्ति देखते हैं या फिर चित्र होगा, जब चित्र होगा तभी हम कनेक्शन नहीं जोड़ सकते हैं। मूर्ति के बिना, चित्र के बिना हम कनेक्शन नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मूर्ति का भी आधार हमें लेने की जरूरत नहीं है। और कल वाले सेशन में हमने ये देखा, परमात्मा निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, उनका कोई आकार नहीं है। तो इसीलिए उस मूर्ति का भी बेस, उसका आधार लेने की भी जरूरत हमें नहीं है। और कुछ लोग समझते हैं शायद मेडिटेशन करने के लिए हमें सन्यास करना होगा, घर बार छोड़ करके हमें जंगलों में जाना होगा। यहाँ हम कहते हैं जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, घर बार या दुनिया को छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें सन्यास करना है बॉडी कॉन्शियसनेस से, हमें त्याग करना है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान को त्याग करके आत्मिक स्थिति में स्थित होना, इसको सन्यास योग कहते हैं या राजयोग कहते हैं। और मेडिटेशन में करना क्या है? भक्ति में जब भी हम भक्ति मंदिर जाते हैं या भगवान को याद करते हैं, कुछ न कुछ हम लेने के लिए याद करते हैं। जब संकट आता है तब भगवान को याद करते हैं। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, हमारे कॉलेज के गली में लास्ट कॉर्नर में एक गणपति का मंदिर था, और गणपति के मंदिर में सारे साल में कोई भीड़ नहीं होता था, लेकिन एग्जाम के टाइम पे ज्यादा भीड़ होती थी वहां। तो हर कोई वहां जाकर के माथा टेकते थे, हे भगवान मेरा पास करा दो, हे भगवान मेरा फर्स्ट क्लास करा दो। तो वहां भीड़, संकट जब होता है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो भगवान को हम ज्यादा याद करते हैं। जब भी मंदिर को विजिट करते हैं या कोई भी वर्शिप प्लेस को जब हम विजिट करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते जरूर है, लंबा चौड़ा लिस्ट लेके जाते हैं, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये देंगे तो फिर मैं कुछ दूंगा, 101 नारियल फोड़ दूंगा या फिर 101 दिया जला लेंगे, कोई ना कोई मन्नत मांगते हैं, ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा या करूंगी, ये नहीं मिला तो ये भी नहीं करेंगे। तो भगवान के साथ हम बार्गेन करना शुरू करते हैं, क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है, कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। तो वही फॉर्मूला हम भगवान के लिए अप्लाई करते हैं, शायद भगवान को कुछ देंगे तो हमें कुछ मिलेगा। तो यहाँ उल्टा, मिलेगा तो मैं दूंगी, ऐसा नहीं कि मैं दूं तो फिर मिले, ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ तो भगवान को कुछ चाहिए क्या? वो तो दाता है, देने वाला है। तो हम निस्वार्थ रूप से परमात्मा को जब हम याद करते हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाता है, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ मांगना नहीं है, केवल उस स्वरूप में स्थित हो जाना है बस। जैसे सागर के किनारे जाकर के हम ये कहें कि हे सागर मुझे ठंडी हवा दो, मांगने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर खड़े हो गए तो ठंडी हवा मिलना शुरू हो गया। लेकिन सागर के 100 किलोमीटर दूरी पर खड़े होकर के मैं कहो ये सागर मुझे ठंडी हवा दो, मिलेगा? 100 किलोमीटर दूरी पर नहीं मिलेगा, वहां फिजिकली जाएंगे तो मुझे ठंडी हवा मिलेगा ना। तो ऐसे ही यहां भी केवल कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली प्राप्तियां तो होंगी, केवल मुझे जाकर के वहां उपस्थित रहना है तो फिर प्राप्तियां अनुभूतियां होती रहेगी। तो इसलिए यहां मांगने की जरूरत नहीं है। मांगता क्यों नहीं जरूरी नहीं है? मांगने से कितना मिलेगा? मांगने से कितना मिलेगा? बहुत थोड़ा मिलेगा। जैसे आपके घर के सामने अगर कोई भिखारी आए, कुछ मांगे तो कितना देंगे उनको? थोड़ा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया इतना दे देंगे। आप तो अपने मिल्कियत तो नहीं देंगे ना, आपका जो सारा जो प्रॉपर्टी है वो तो दे नहीं देंगे। प्रॉपर्टी किसको देंगे आप? आप अपने प्रॉपर्टी किसको देंगे? वारिस को देंगे, अपने बच्चों को देंगे, भिखारी को नहीं देंगे। तो यहां मांगने से थोड़ा मिलता है, लेकिन उस स्थिति में जब हम स्थित हो जाते हैं कि मैं कौन हूं, उस परमात्मा की संतान हूं, मैं वारिस हूं, जब उस अधिकार से जब हम याद करते हैं पूरी तरह, हम वो अटेनमेंट्स, वो प्राप्तियां अनुभव कर सकते हैं। यहां मांगने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन के बारे में कुछ इल्यूजन्स हैं, भ्रांतियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेडिटेशन करने के लिए मन को एकदम शून्य करना होगा, मन में कोई भी प्रकार के विचार नहीं ले आना है, वो है मेडिटेशन। यहां हम कहते हैं मन को एकदम शून्य आप नहीं कर सकते हैं। मन के विचारों को चैनलाइज किया जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग करना होता है, आत्मिक स्थिति में स्थित करना होता है, पॉजिटिव और पावरफुल थिंकिंग, इसको मेडिटेशन कहा जाता है। मन को एकदम शून्य के कोई भी थॉट्स ना आए, विचार नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात है, टू मेडिटेट वी हैव टू फोर्स योर माइंड, मन को के ऊपर बल देना पड़ेगा या फिर जोर लगाना पड़ेगा। मन पर जोर नहीं लगा सकते हैं, एक केवल उसको समझा सकते हैं। मन एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को समझा करके उसको चैनलाइज किया जाता है। तीसरी बात है, यू कांट मेडिटेट बिकॉज योर माइंड इज टू फास्ट, मन बहुत फास्ट भागता है, इसलिए मेडिटेशन हम नहीं कर सकते हैं। मेडिटेशन करते करते मन की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। फास्ट गति कब होता है मन का? फास्ट तब होता है जब नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग की स्पीड बहुत ज्यादा होता है, पॉजिटिव थिंकिंग की स्पीड बहुत कम होता है। चौथी बात है, टू मेडिटेट यू नीड टू सिट इन अ सर्टन पोस्चर। कोई भी पोस्चर की बात नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ करके हम मेडिटेशन कर सकते हैं। टू मेडिटेट द सराउंडिंग शुड बी टोटली क्वाइट। हाँ, स्टार्टिंग में एक शांत वातावरण में बैठ करके एकाग्रता में बैठने के लिए मदद मिलता है, लेकिन बाद में जब निरंतर हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं लगातार, तो फिर कोई भी शांत वातावरण की जरूरत नहीं है। बिजी बाजार में भी आप मेडिटेशन कर सकते, चलते फिरते भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। टू मेडिटेट यू हैव टू क्लोज योर आईज। आंखों को बंद करने की जरूरत नहीं है मेडिटेशन करने के लिए। क्यों? ये ओपन आई मेडिटेशन है। आंखों को खुला रख करके मेडिटेशन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आंखों को बंद करेंगे तो मन को कोई भी सीमा नहीं होगा, कोई लिमिटेशन नहीं होगा, मन इजिली भाग सकता है बंद आंखों के साथ। खुले आंखों के साथ बहुत जल्दी आंख मन भागता नहीं है। हाँ, अगर खुले आंखों से आपको मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में बंद रखा फिर खोला तो वो ऐसे आप कर सकते हैं। पूरी तरह बंद करके आप मेडिटेशन करने बैठे तो वो आप मन बहुत जल्दी भाग जाता है। जब भी आप कोई संतों को देखते हैं, संतों के चित्र को देखते हैं, गुरु नानक जी का चित्र या फिर महात्मा बुद्ध का चित्र आप देखते हैं, उनके आंख कैसा होता है? उनका आंख आधा क्लोज्ड है, आधा खुला है। इसका मतलब है मेडिटेशन करते समय आंख भले खुले हैं, देख रहे हैं, देखते हुए भी मेरा ध्यान वहां नहीं है, ध्यान पूरी तरह मेरा अपने ऊपर है। तो वो प्रतीक है हाफ क्लोज्ड आंख, है ना। मेडिटेशन इज बोरिंग, मेडिटेशन बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि हमें पता नहीं है मेडिटेशन कैसे करें, इसलिए बोर लगता है। और मेडिटेशन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। जब हम समझ लेते हैं, जो भी हम करना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए ड्राइविंग नहीं आता है, जब करना शुरू करते हैं तो मुश्किल लगता है, लगातार जब हर रोज ड्राइविंग करते हैं तो बहुत इजी लगने लगता है ना। जब सीखे नहीं है तो स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, लेकिन करते करते हर चीज सहज होने लगता है। ऐसे मेडिटेशन भी बहुत सहज है। और मेडिटेशन कौन कर सकता है? हर कोई भी कर सकता है, कोई भी देश वाला, कोई भी प्रांत वाला, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। हर व्यक्ति, हर आत्मा मेडिटेशन कर सकता है। तो चलिए, ये हुआ फिजिकल डायमेंशन। अभी हम चलते हैं एक मेंटल डायमेंशन में चलते हैं। अभी बैठ करके सोचना क्या है और यहां अंदर के अंदर यहां चलता क्या है। तो अभी देखा फिजिकल आधार हमें नहीं लेना है, मंत्र जाप नहीं करना है या मंत्र मूर्ति पूजा नहीं करना है या फिर माला नहीं फेरना, फिजिकल आधार हम नहीं ले रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। तो फिर अभी सूक्ष्म आधार क्या ले जिसके आधार से मेरा योग लग जाए। सबसे पहली बात है परिचय, जिसको भी हम याद करते हैं इस संसार में। अगर किसी को भी याद करते हैं, किसको याद करते हैं? जिसका परिचय हो। जिसका परिचय नहीं है उसको याद करते हैं? याद कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि परिचय ही नहीं है, है ना। जिनका परिचय है तो उनको हम याद करते हैं। दूसरी बात है जिनके साथ संबंध है उनको हम याद करते हैं, है ना। और संबंधी बहुत होंगे, फ्रेंड्स बहुत होंगे, लेकिन कुछ खास रिलेटिव्स या खास फ्रेंड्स क्यों हैं? क्योंकि उनके प्रति हमारा स्नेह ज्यादा होता है। जिनके प्रति स्नेह है उनको हम याद ज्यादा करते हैं। और चौथा बेसिस है या आधार है जहां अटेनमेंट्स हैं, जहां प्राप्तियां हैं, वहां हम याद करते हैं। अगर कुछ मिलना हो, कुछ प्राप्त हो रहा हो, उस व्यक्ति को हम ज्यादा याद करते हैं। तो योग माना याद है। हम इन चार प्रकार के लोगों को याद करते हैं, जिनका परिचय हो, जिनके साथ संबंध है, जिनके प्रति हमारा बहुत प्यार है और जिनसे हमें प्राप्तियां हो रही है उनको हम याद करते हैं। इसी फॉर्मूला को जब हम परमात्मा के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां हमें याद करना है किसको? परमात्मा को याद करना है, परमात्मा के साथ योग लगाना है। इसी फॉर्मूला को जब हम परमात्मा के साथ लगाते हैं तो इंट्रोडक्शन तो मिल गया, परमात्मा का इंट्रोडक्शन तो कल मिल गया। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो इंट्रोडक्शन मिल गया, वो प्रकाश है। चाहे हम किसी भी नाम से पुकारते हैं, शिव कहे, परमात्मा कहे, भगवान कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, लेकिन वो ज्योति बिंदु है, वो ईश्वर है, है ना। वो इंट्रोडक्शन मिल गया। और दूसरी बात है उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है। संबंध क्या है उस परमात्मा के साथ? हमारा संबंध क्या है? पिता है, पिता और संतान का संबंध, केवल एक संबंध है, केवल एक संबंध है। जब भी हम भगवान को याद करते रहे तब क्या कहते हैं, आप तो सर्वोच्च हो लेकिन हम आपके चरणों के धूल हैं। क्या चरणों के धूल हैं हम या नैनों के नूर हैं? भगवान के नैनों के नूर हैं या चरणों के धूल हैं? चरणों के धूल माना सर्वेंट बन जाना, लेकिन नैनों के नूर माना संतान। तो और सर्व संबंधों के साथ परमात्मा को याद कर सकते हैं। जब आरती करते हैं ये कहते हैं ना, आप मात पिता बंधु सखा सब कुछ आप हैं, है ना? तो कीर्तन करते समय भगवान को इस रूप से याद करते हैं, लेकिन जब कर्म में आते हैं तो भगवान को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो भगवान हमारा पिता भी है, माँ भी है, टीचर है, सदगुरु है, सखा है, स्वामी है। सब संबंधों से भगवान को याद कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में अलग अलग भगत अलग अलग संबंधों से भगवान को याद किया है। अर्जुन ने भगवान को सखा माना, तो सखा के रूप में भगवान ने उनकी मदद की। द्रौपदी ने भगवान को भाई माना, भाई के रूप में समय पर द्रौपदी की मदद की। भक्त प्रहलाद ने भगवान को पिता माना, तो समय पर पिता के रूप में भक्त प्रहलाद की मदद उन्होंने की, है ना? तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग संबंधों से भगवान को याद किया, तो उस रीति से हर एक को मदद मिली। यहां हम कहते हैं एक संबंध के साथ अपने आप को लिमिट नहीं करना, हर संबंध के साथ हम भगवान को याद कर सकते हैं। वो हमारे माँ है, माँ के संबंध से जब हम याद करते हैं एक निस्वार्थ प्रेम की अनुभूति होती है, और पिता के रूप में भगवान को याद करते हैं शक्ति की अनुभूति, वर्षे के अधिकार के रूप में वो प्राप्ति होती है, तो फिर वो अनुभव होता है। टीचर के रूप में याद करते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो परम टीचर के द्वारा। और सद्गुरु के रूप में याद करते हैं तो गाइडेंस मिलता है हमें, राह जिंदगी में राह मिलता है, कौन से परिस्थिति में क्या करना है वो हमें समझ मिलती है सद्गुरु के द्वारा। और सखा फ्रेंड के द्वारा हमें कंपेनियनशिप मिलता है, एक अपने दिल की बात हम शेयर कर सकते हैं परमात्मा के साथ। वो परमात्मा हमारा सखा भी है, इसीलिए खुदा दोस्त कहते हैं ना। तो परमात्मा को केवल पिता के रूप में नहीं, सखा के रूप में भी, फ्रेंड के रूप में भी हम याद कर सकते, जहां हम सब कुछ परमात्मा के साथ शेयर कर सकते हैं। और जितना जितना संबंध गहरा होता जाता है, स्नेह गहरा होता जाता है, प्रेम परमात्मा के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाता है और गहरा होता जाता है, और फिर परमात्मा को याद करना मुश्किल नहीं लगता, सहज लगने लगता है। जब प्यार गहरा होगा ऑटोमेटिकली प्राप्तियां, जो चौथे लेवल है, प्राप्तियां ऑटोमेटिकली हमको अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ये है आधार, इन सर्व संबंधों से, प्यार से, अनुभूतियों के आधार से हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। और विधि क्या है, मेडिटेशन करने की विधि, जब हम बैठते हैं साइलेंस में, जब एक पोस्चर में बैठते हैं, फिर मन से सबसे पहले क्या सोचना है, सबसे पहली बात है कॉन्टेम्पलेशन, मना मनन चिंतन, और फिर है कनेक्शन जोड़ना, और तीसरा लेवल है एकाग्रता, और चौथे लेवल में है रियलाइजेशन या अनुभूति। तो एक एक हम अगर देखते हैं, एक एक स्टेप में करना क्या है। सबसे पहली बात है, पहला स्टेप है कॉन्टेम्पलेशन या मनन चिंतन। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, सोचना शुरू करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू करते हैं, अपने आप के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, शरीर के भान में अब तक आए हुए होते हैं दिन भर में, लेकिन शरीर के भान से अपने मन और बुद्धि को निकाल करके यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में अपने फोकस को केंद्रित करना होता है, और वहां केंद्रित करके फिर विचारों पर हमें ध्यान देना होता है, मैं क्या सोच रही हूं। पॉजिटिव थिंकिंग को बदलने की जरूरत, अभी तक जो सोच रहे हैं उससे वहां चैनल को चेंज करने की जरूरत है, और पॉजिटिव थिंकिंग, इसलिए मनन चिंतन कहते हैं, स्व के बारे में सोचना शुरू करते हैं, आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप में। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं मनन सागर मंथन, सागर मंथन असुर और देवताएं सागर मंथन किए, और सागर मंथन करते समय क्या अलग अलग चीजें निकली और लास्ट में विष भी निकला, है ना। तो जब हम सोचना शुरू करते हैं तो बहुत अलग अलग चीजें या अलग अलग याद चीजें याद जरूर आएगा, लेकिन बार बार पुनः अपने फोकस स्वयं के ऊपर केंद्रित करना जरूरी होता है। अगर नेगेटिव सोच, विष माना नेगेटिव विचार भी आ सकता है, लेकिन विष जब आया तो किसको बुलाया उसको पीने के लिए, शंकर जी को बुलाया उस विष पान करने के लिए, इसीलिए उनको कहा नीलकंठेश्वर, है ना। इसलिए यहाँ परमात्मा को अर्पण कर लेते हैं, अगर नेगेटिव भी आ गया तो परमात्मा को अर्पण करते हुए फिर से हम मनन चिंतन करना शुरू किया, स्व के बारे में सोचना शुरू किया, मन आत्मा के बारे में, तो फिर वो है मनन चिंतन। और सेकंड स्टेप है कनेक्शन जोड़ना, कनेक्शन माना योग है, एक है खुद के साथ कनेक्शन जोड़ना, खुद के साथ कनेक्शन जोड़ना माना आत्मा के साथ, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, मैं आत्मा ओरिजिनली क्या हूं, ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना, वो कहते हैं अपने आप के साथ कनेक्शन जोड़ना, और दूसरी बात है परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना। परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए देह भान को त्याग करना बहुत जरूरी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, जैसे कोई दो इलेक्ट्रिक वायर्स को जब जोड़ते हैं, ऊपर के इंसुलेशन को निकाल करके कॉपर वायर्स को जोड़ते हैं, तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। परमात्मा का कोई इंसुलेशन नहीं है, माना बॉडी नहीं है, है ना, वो कॉपर वायर है ना, इसीलिए उनके साथ मुझे अगर जोड़ना है तो मुझे अपने कॉपर वायर माना आत्मा इंसुलेशन जो शरीर है उस भान को त्याग करके अपने आप को आत्मा जब समझा तो फिर कनेक्शन जुड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना परमात्मा के सामने कोई भी माना कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हर एक समान है। परमात्मा जब हमें देखते हैं शरीर को नहीं देखते, केवल आत्मा को देखते हैं। शरीर कौन सा कलर है, कौन से शेप का है, सुंदर है, कुरूप है, शरीर को नहीं देखते हैं परमात्मा, आत्मा को देखते हैं। क्योंकि परमात्मा को शरीर नहीं है तो इसलिए शरीर नहीं देखते, आत्मा को देखते। इसलिए परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए खुद को आत्मा समझने से, उस स्वरूप में स्थित होने से ऑटोमेटिकली कनेक्शन जुड़ जाता है। और तीसरी बात है, तीसरा स्टेप है एकाग्र हो जाना। कनेक्शन जोड़ते समय अलग अलग संबंधों के साथ, अलग अलग गुणों के साथ, शक्तियों के साथ हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं, लेकिन एकाग्र होने के लिए एक ही विचार में, एक ही संबंध, एक ही गुण या एक ही शक्ति में जब हम लंबे काल तक स्थित हो जाते हैं, तब जाकर के आत्मा वो गुण या शक्ति अब्सॉर्ब करती है। अगर मैं बार बार बदलूं विचार को, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, परमात्मा शांति का सागर है, परमात्मा ज्ञान का सागर है, शक्तियों का भंडार है, तो मैं गुणगान कर रही हूं लेकिन एक स्वरूप में स्थित नहीं हो रही हूं, तो मैं अब्सॉर्ब नहीं कर सकती हूं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं स्टिल वॉटर्स रन डीप। जब पानी स्थिर हो जाता है वो गहरा होता है। तो इसलिए जब हम एक स्थिति में स्थित होते हैं तो फिर उस शक्ति को, गुण को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, फिर हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है तब भस्म हो सकता है। एकाग्रता के आधार से ही नेगेटिविटी भस्म होगा। बार बार चेंज करते रहेंगे वो शक्ति हम ग्रहण नहीं कर सकते, अब्सॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे एक कॉन्वेक्स लेंस को सूर्य के नीचे रख करके फिर पेपर को एक फोकल पॉइंट पर रखेंगे तो क्या होगा, कुछ ही मिनटों में वो पेपर जलना शुरू हो जाता है। लेकिन उस पेपर को सालों सालों तक सूर्य के नीचे रखेंगे वो जलेगा नहीं, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस रखा और फिर कुछ ही मिनटों में फोकल पॉइंट पर रखा तो जलना शुरू हो गया। वो फोकल पॉइंट पर क्या होता है, वो सारी किरणें जो है, सनलाइट जो है, वो फोकस होकर के एक पॉइंट पर वो फोकस हो रहा है। तो उस पॉइंट पर अगर हम पेपर रखते हैं तो वो पेपर जलता है। ये है एकाग्रता की शक्ति। सूर्य के शक्ति को वो एकाग्र करके एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, तब जाकर के वो पेपर जलता है। लेकिन वो सूर्य के किरणें बिखर करके वो पेपर पर पड़ रहा है लेकिन पेपर जलता नहीं है। ऐसे ही हम बार बार अलग अलग विचार ले रहे हैं, अलग अलग गुण और शक्तियों को ले रहे हैं, हमारे अंदर के नेगेटिविटी भस्म नहीं हो सकता। तो एकाग्रता आएगी थर्ड स्टेप में। वहां तक पहुंचने के लिए मनन चिंतन, फिर संबंधों के आधार से कनेक्शन जोड़ते हुए फिर एकाग्रता तक पहुंचना है उस, और फिर एकाग्रता में, एकाग्रता से जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो प्राप्तियों की अनुभूति, गुण और शक्तियों की अनुभूति हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और फिर वो जो अनुभव करते हैं और कर्म में भी दिखाई देना लगता है बाद में। केवल ये जो मेडिटेशन है चंद क्षणों की शांति की अनुभूति नहीं है। हाँ, मेडिटेशन में बैठ गए तो शांति महसूस हो गया, नहीं, वो पर्याप्त नहीं है। वो मेडिटेशन का जो रिजल्ट है वो अपने कर्मों में दिखाई देना चाहिए। क्या मेरे संस्कारों में परिवर्तन आया, मेरा गुस्सा कम हुआ, मेरा ईर्ष्या द्वेष कम हुआ, तो ये जो भी नेगेटिविटी है मेरे जीवन में कम होता हुआ नजर आता है, तो फिर कहेंगे कि मैं जो मेडिटेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा है। तो वो कर्मों में दिखाई देना चाहिए। मेडिटेशन माना केवल शांति की अनुभूति नहीं है, संस्कारों में परिवर्तन आना ये है मेडिटेशन का अल्टीमेट रिजल्ट। तो इसीलिए चारों ही बेसिस जो आधार है वो कनेक्टेड है मेथड के साथ या विधि के साथ। इंट्रोडक्शन, परमात्मा का परिचय, मनन चिंतन करना शुरू किया, फिर कनेक्शन, संबंधों के आधार से मेरा कनेक्शन जुड़ता है परमात्मा के साथ, फिर जब प्यार गहरा होता है एकाग्रता में बैठना मुश्किल नहीं लगता, उस प्यार में मग्न हो सकते हैं, वहां एकाग्रता बहुत सहज हो जाता है, फिर रियलाइजेशन अटेनमेंट्स ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। ठीक है, मेडिटेशन के बारे में ये है परिचय। कुछ प्रश्न है मेडिटेशन के बारे में, और भी स्पष्ट हुआ होगा मेडिटेशन कैसे करना है? कुछ क्वेश्चंस है? हाँ, स्टार्टिंग में तो आएगा ही मनन चिंतन, है ना। तो क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारे स्टेप्स आप अनुभव कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है ये समझना जरूरी है, थॉट्स आते कहाँ से? आप कह रहे हैं थॉट्स वहां बॉम्बार्ड हो रहे हैं, बॉम्बार्डमेंट बाहर से नहीं होता है, थॉट्स कहीं बाहर से नहीं आते हैं। थॉट्स कहां से आते हैं? थॉट्स कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? हु इज द क्रिएटर ऑफ थॉट्स? कौन है क्रिएटर थॉट्स के? खुद है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माय ओन थॉट्स। मैं अपने विचारों को क्रिएट करती हूं, मैं जो सोचती हूं, है ना, वो थॉट्स यहां से आते हैं, बाहर से नहीं आता। हाँ, थॉट्स पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस है। इन्फ्लुएंसेस कौन से हैं? जो मैं देखती आई हूं, करती आई हूं, मेमोरीज है, तो सारे इन्फ्लुएंसेस मन के ऊपर है। उस उन इन्फ्लुएंसेस के आधार से मैं विचार करती हूं, बट आई एम द क्रिएटर, वो मुझे समझना है। ये नहीं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूं, कंट्रोल कर सकती हूं क्योंकि आई एम द क्रिएटर, कंट्रोल, आई एम द कंट्रोलर ऑल्सो, है ना। हाँ, वी आर द ड्राइवर ऑफ आवर ओन कार, है ना। तो केवल चैनलाइज करने की जरूरत है। हाँ, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मन के साथ बात करना सीखो आप। ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, है ना। नहीं, मुझे वो सोचना नहीं है। अगर किसी के प्रति मुझे नफरत है, घृणा है, वो नफरत क्यों है, इसने ऐसा किया, तो अपने आप के साथ बातें करते सॉल्यूशन लाना होगा, है ना। अब दूसरों के साथ काउंसलिंग करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो काउंसलर के साथ काउंसलर के पास जाते हैं। खुद के काउंसलिंग खुद करना सीखना होगा। मन वो काउंसलिंग करने के लिए क्या करना है, खुद के विचारों को देखना है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उठके उसके रूट कॉज कहां है। कुछ ऊपर से कुछ और दिखाई दे रहा है लेकिन रूट कॉज कुछ और हो सकता है। वहां तक जाएंगे तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, है ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? सही टाइम मेडिटेशन करने की, सुबह सुबह उठते ही, क्योंकि उस समय तो एकदम फ्रेश होते हैं और थोड़ा बहुत जल्दी उठेंगे तो फिर इतने बिजी नहीं होते, तो आराम से उस समय बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले भी मेडिटेशन करके सोए ताकि फिर नींद अपना बहुत ही अच्छा रहे, वो भी अच्छा है। मेडिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जब नींद करके उठते हैं तो उस कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव नहीं रहता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना बहुत इजी हो जाता है। तो मेडिटेशन इज लाइक प्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस माइंड। जो भी होगा बाद में सोचा जाएगा, ये जो 10-15 मिनट्स है पूरी तरह मन को एकाग्र करेंगे, मालिक बन जाइए मन के, मैं आत्मा अपने मन का मालिक हूं, जो भी विचार आते हैं वो बाद में उसको डील करेंगे, है ना। तो केवल अभी हम फोकस करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, और मेडिटेशन करते समय तीन शक्तियों को हमें यूज करना है। अभी जो भी बातें कर रहे हैं थोड़े देर के लिए साइलेंस में बैठ जाए तो अच्छा है ना। पूरी तरह अभी केवल 10 मिनट्स के लिए फोकस कर लेते हैं, बाद में आप आपस में बात करेंगे। तीन शक्तियों को यूज करते हैं। एक है विचार करने की शक्ति, थॉट पावर। दूसरी है विजुलाइजेशन पावर, बुद्धि की शक्ति, जिसके द्वारा हम क्लियरली पिक्चर की तरह हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा। और तीसरी शक्ति है फीलिंग, महसूस करना। अगर मैं ये कह रही हूं शांति, क्या मैं उस शांति को महसूस कर सकती हूं, फील कर सकती हूं? तो इन तीनों ही शक्तियों को यूज करते हुए, थॉट पावर, विजुलाइजेशन पावर, फीलिंग पावर, इन तीनों ही शक्तियों को यूज करते हुए चलिए मेडिटेशन करते हैं। सबसे पहले फिजिकल पोजीशन, अपने बैक बोन को स्ट्रेट रखें, कंफर्टेबली बैठ जाएं, लेकिन साथ साथ अलर्ट। कुर्सी पर बैठे हैं तो इसीलिए कोई बात नहीं, सुखासन में आप नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों ही पैर नीचे रख सकते हैं, क्रॉस नहीं। ग्राउंडेड, रिलैक्स्ड एंड अलर्ट। और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे आप अपने मन में विचार लाएं, साथ साथ विजुलाइज भी करें और महसूस भी करें, फील भी करें। अपने आंखों को हाफ क्लोज्ड पोजीशन में रखें और कोई भी एक जगह पर, एक पॉइंट पर अपने आंखों को फोकस कर सकते हैं। फोकस माना केवल स्थित करना है, आंखों को एक जगह पर स्थित करना मन को एकाग्र करने के लिए मदद मिलती है। आपको अगर मुश्किल लगता है आंखों को खुला रख करके फोकस या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, बीच बीच में आप बंद कर सकते हैं आंखों को, लेकिन लंबे काल तक आंखों को बंद न रखें। मेन फोकस है मन एकाग्र होना चाहिए, जो कमेंट्री दिया जा रहा है उस पर फोकस और खुद पर फोकस। चलिए खुद पर फोकस करें, मन के स्क्रीन पर भ्रुकुटी के मध्य में, आसपास के वातावरण से, लोगों से मन बुद्धि को डिटैच करते हुए मैं आत्मा अपने पर फोकस करती हूं। मन के स्क्रीन पर मैं अपने आप को देखती हूं। भ्रुकुटी के मध्य में, ब्रेन के बीचों बीच एक चमकता हुआ अजब सितारा। चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है, मेरा घर है। इस घर में मुझ आत्मा का पर्सनल कमरा, ब्रेन, उसमें मैं आत्मा बैठी हूं। वहां बैठकर अलग अलग कर्मेंद्रियों से अलग अलग कर्म कर रही हूं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर आंखों की खिड़कियों के द्वारा इस संसार के साथ कनेक्शन जोड़ती हूं। आंखों की खिड़की बंद होते ही इस बाहरी जगत के साथ मुझ आत्मा का कनेक्शन कट हो जाता है। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा शब्द के जगत के साथ कनेक्शन जोड़ रही हूं। मैं आत्मा मुख के द्वारा अपने विचारों को, भावनाओं को प्रकट कर सकती हूं। इस शरीर के अलग अलग अंगों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूं, लेकिन करने वाली मैं आत्मा मालिक हूं, कंट्रोलर हूं। मन और बुद्धि को भी कंट्रोल करने वाली, चलाने वाली मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का निजी रूप ज्योति स्वरूप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, आत्मा की शक्तियां किरणों के द्वारा पूरे शरीर में फैला रही हूं, मैं आत्मा निरंतर शक्तियों के प्रकंपनों को फैलाती हूं, मैं सेल्फ ल्यूमिनस स्वयं प्रकाशित आत्मा, मैं प्रकाश स्वरूप, मन और बुद्धि से मैं ऊपर की तरफ देखती हूँ और वहां मुझ आत्मा के परम पिता परमात्मा उपस्थित है, सूर्य समान सर्वशक्तिमान परमात्मा, मैं आत्मा उस परमात्मा के अति प्रिय संतान हूं, परमात्मा भगवान इस सृष्टि का रचयिता, सर्व आत्माओं का पिता, सर्वशक्तिमान उनकी शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, मैं आत्मा उन सर्व शक्तियों की किरणों को अब्सॉर्ब कर रही हूं, ग्रहण कर रही हूं, अपने अंदर भरती जा रही हूं, परमात्मा आत्मा की शक्तियां मुझ आत्मा के नकारात्मक संस्कार, नकारात्मक भावनाओं को भस्म करता जा रहा है, मैं आत्मा शुद्ध होती जा रही हूं, पवित्र होती जा रही हूं, सशक्त होती जा रही हूं। निरंतर परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपने आप को भरते हुए संसार में फैलाते चले। निरंतर परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। परमात्मा से ले रही हूं